भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय रामचंद्राय
हरे कृष्णा। तो क्योंकि अभी हम थोड़ा कीर्तन कर चुके हैं, पहले हम डायरेक्ट क्लास से शुरू करते हैं जैसा मुझे कहा गया है। तो सबसे पहले तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, थैंक यू फॉर कमिंग। और जैसा कि प्रभु जी ने भी अनाउंस किया, अभी दो दिन के बाद रामनवमी है, तो हम उस उपलक्ष्य में भगवान रामचंद्र जी के बारे में कुछ कहने और सुनने का प्रयास करेंगे। और भगवान के बारे में चर्चा करने का हमारा दो उद्देश्य होता है, एक भगवान के चित्त को आकर्षित करना और दूसरा हमारे चित्त का शुद्धिकरण करना। तो आप सबसे आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए हम थोड़ा कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ सिटी से रसराज गौरांग प्रभु, शिव कुमार प्रभु और संदीप प्रभु आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे ये श्लोक है, इसको दोहराइएगा। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मात्र समो गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम, नास्ति गंगा समं तीर्थम, नास्ति मात्र समो गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। अर्थात गंगा नदी के समान ना ही कोई तीर्थ है और न माता के समान कोई गुरु है। भगवान विष्णु के समान न कोई अन्य देवता है और रामायण के समान न अन्य कोई काव्य है। तो आप में से बहुत लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण सुनी होगी। और रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की और लगभग 24,000 श्लोक उन्होंने इसमें लिखे हैं। तो रामायण एक अथाह महासागर के जैसा है। जैसे आप अगर महासागर या सागर के सामने खड़े रहो और आप उसमें देखो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितना गहरा है ना? सागर की गहराई को कोई माप सकता है? नहीं माप सकता है। सागर के अंदर कितने मोती है, कितनी मछलियां हैं, किसी को पता नहीं है। हालांकि मछलियां ऊपर ऊपर रहती है और मोती एकदम डीप अंदर जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है रामायण महाभारत भागवतम इत्यादि के बारे में। और कोई 45 मिनट एक घंटे के अंदर कोई पूरी रामायण बता भी नहीं सकता। और हमारी तो ऐसी अवस्था है कि ना हमारी कोई योग्यता है और ना ही कुछ आता है, लेकिन क्योंकि भक्तों की सेवा करने के लिए कहा गया है, इसके लिए आपके समक्ष बैठकर कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ। और जैसे कौवा एक बड़ी गद्दी पर बैठ के गरुड़ नहीं बन सकता, वैसे हमारी स्थिति है कि हम कोई कथाकार नहीं है, कथा भी नहीं सुना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मन की शुद्धिकरण के लिए और भगवान के मन को आकर्षित करने के लिए, उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए हम कुछ दो शब्द कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि विदुर जी को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंगद यथामति यथाश्रुतम कीर्तिं स्वं सत् हरि कर्तुं गिरा अन्याभिदासिते। तो कहते हैं कि हे विदुर जी, आप मुझसे अनेकानेक प्रश्न कर रहे हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता मुझ में नहीं है। तथापि, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। कीर्तयामि मतलब मैं कीर्तन करूंगा, मैं कहूंगा। तो कीर्तन मतलब क्या है कि भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला का वर्णन करना, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। तो सुखदेव गोस्वामी हमारे कीर्तन के आचार्य है, ओके। परीक्षित महाराज हमारे श्रवण के आचार्य है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कौन सा कीर्तन किया था? भागवत का कीर्तन किया था, उन्होंने भागवत सुनाया था। तो ये कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंग, हे विदुर, मैं फिर भी कुछ कहने का प्रयास करूंगा। यथामति यथाश्रुतम, जैसा मैंने सुना है अपने गुरुजनों से और जितना मुझे याद रह पाता है। क्योंकि क्या होता है कि सब कुछ सुना हुआ याद तो रहता नहीं है, और हम तो कलयुग के जीव है, और कलयुग के जीव की तो ऐसी अवस्था है कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले सुनते हैं और थोड़ी देर के बाद में भूल जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। 100 चीज सुनेंगे उसमें से, मतलब 100 चीज कोई कहेगा तो शायद 80 तो सुनाई देगा हमारे को, उसमें से 60-70 समझ में आएगा, और उस 60 में से थोड़ा सा और कम हमारे को शायद उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे, और 25% भी उसमें से याद नहीं रहेगा। तो 100 में से 25% तो हमारा उससे भी कई बार कम सिचुएशन होता है। तो कहते हैं यथामति यथाश्रुतम, और यदि मैं भगवान की कीर्ति का गान नहीं करूंगा तो क्या होगा कि मेरी जो जिह्वा है वो एक वैश्या का रूप धारण कर लेगी और कुछ भी बकवास करने लगेगी। क्योंकि हमारी ये जो जिह्वा है ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है इसको कंट्रोल करना, है क्या नहीं। तो हर कोई जो बड़े बड़े महात्मा है उन्होंने सबसे पहले बात यही बताया है कि हमारी जिह्वा को कैसे कंट्रोल करना, है ना। जैसे रूप गोस्वामी भी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रपस्त वेगम, कि सबसे पहले तो वाचो मतलब बोलना। जिह्वा का क्या काम है? दो काम है, एक तो जीभ बोलती है और दूसरा स्वाद लेती है, खाना खाते है ना। तो इन दोनों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और भक्ति विनोद ठाकुर हम लोग रोज गाते हैं के तार मध्य जीवा अति लोभोमय सुदूरमति, है ना। जब महाप्रसाद गोविंद हम जब गाते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि तार मध्य जीवा अति लोभोमय, कि बहुत लोभी है ये जीव और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि इसलिए मैं हरि कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरी जीवा मेरे कंट्रोल में रहे, है क्या नहीं। तो ये रामायण महासागर जो है इतिहास है, ये हमारे तीन जो मेन शास्त्र है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो है रामायण, जो है धर्म शास्त्र। तो धर्म क्या है अगर किसी को समझना है तो रामायण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, रामायण को पढ़ना पड़ेगा। महाभारत व्यवहार शास्त्र है, किस प्रकार का व्यवहार करना वो हमको महाभारत से सीखना है। और भागवत जो है वो कौन सा शास्त्र है? वो प्रेम शास्त्र है, कि भगवान से प्रेम कैसे करने का और प्रेम का आदान प्रदान कैसे हो वो हमको भागवत समझाता है। और उसके आगे और एक है, वो है चैतन्य चरितामृत, जो कि औदार्य शास्त्र है, कि भगवान की उसमें बहुत कृपा है। तो जैसे एक कवि है वो कहता है कि जैसे हमारे से समझो भगवान कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि कृष्ण एक है वृंदावन के कृष्ण, है क्या नहीं, श्याम सुंदर। फिर एक है मथुरा के कृष्ण और एक है द्वारिका के कृष्ण, है क्या नहीं। तो हम लोग को कौन से कृष्ण चाहिए? कौन से? सुना है ना आपने, आराध्य भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद् उपासना व्रज वधु वर्गे नया कल्पिता
श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादराना पर।
तो चैतन्य महाप्रभु का यह मत है कि आराध्य भगवान ब्रजे से तनय, कि हमारे जो आराध्य भगवान है वो कौन है, श्री नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र यशोदा नंदन श्री कृष्ण है। तो उसी प्रकार से एक राम भक्त है, कवि है, वो कहता है कि एक राम है अयोध्या के और एक राम है किष्किंधा के और एक राम है लंका के। तो आप लोगों को अगर मैं प्रश्न पूछूं कि आपको कौन से राम चाहिए तो आप क्या कहोगे, अयोध्या के, किष्किंधा के या लंका के, कौन से? कितने लोग कहते हैं? अच्छा, वो जो सुबह लेक्चर सुन के आया वो लंका बोल रहा है। तो सभी लोग अयोध्या के कहते हैं, लेकिन ये जो कवि है ये बोलता है कि नहीं, मुझे तो लंका के राम चाहिए। आप में से कितने लोगों को लंका के राम चाहिए? कल एक हाथ उठाए क्योंकि वो सुबह सुन के आया है। तो कहते हैं कि बाकी जो राम है अयोध्या के, किष्किंधा के, उनको बुलाया गया है ना। जैसे दशरथ महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, 60,000 साल के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई और भगवान रामचंद्र जी उनके घर पे अवतरित हुए, है ना, भगवान रामचंद्र जी। और किष्किंधा में भी भगवान को हनुमान जी आके इनवाइट किए, मिले और फिर सुग्रीव से उनकी मुलाकात करवाई। तो कहते हैं कि ये भगवान रामचंद्र जी को किसी ने इनवाइट किया, है ना। लेकिन लंका में भगवान राम को किसी ने इनवाइट किया क्या? किसी ने, भगवान खुद गए वहां पर और खुद जाके लंका पे चढ़ाई की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मेरा हृदय जो है ना वो भी लंका के समान है, मेरा हृदय एकदम डार्क है, काला है, बहुत कचरा भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि सब मेरे हृदय के अंदर है और बहुत काला है और इतना खराब है कि मैं आपको इनवाइट भी नहीं कर सकता। तो हे राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और जबरदस्ती मेरे हृदय के अंदर घुस जाओ। तो भागवत कहता है कि जब हम भगवान की अच्छी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है, काले न अति दीर्घे न भगवान वसति हृदय। तो भगवान क्या कहते हैं, अंदर घुस जाते हैं, है कि नहीं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यह शुणवता रसक ज्ञान स्वाधु स्वाधु पदे पदे। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो अंदर घुस जाते हैं जबरदस्ती। तो वैसे एक दूसरा भक्त है, कई भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं जिसमें वो भक्त जो है भगवान को अपना संबंध स्थापित करता है उनके साथ में। तो एक भक्त कहता है कि मेरा हृदय जो है वो एकदम क्रुकेड है, टेढ़ा मेढ़ा है और मैं सिर्फ कृष्ण की आराधना करता हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी टेढ़े हैं, वो मेरे हृदय में फिट बैठते हैं, है कि नहीं। सीधे साधे व्यक्ति मेरे हृदय में नहीं बैठते हैं, मेरे हृदय में टेढ़े लोग ही बैठते हैं क्योंकि मेरा हृदय बहुत टेढ़ा है, है ना। तो ये जो दो हमारे भगवान है ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कृष्ण भगवान जो है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? एक कवि कहता है, राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर ना ही निमेश। निमेश मतलब होता है कि एकदम लव मात्र से भी जो कम होता है उसको कहते हैं राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर ना ही निमेश। इनके नयन गंभीर है, किनके? राम के नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। और कृष्ण के जो नयन है वो मटकते रहते हैं हमेशा, एक जगह पे खड़े नहीं रहते। भगवान रामचंद्र जी खड़े भी रहते तो सीधे खड़े रहते हैं, भोले भाले सीधे साधे, लेकिन कृष्ण का एक फोटो मेरे को बता दो जिसमें कृष्ण सीधे खड़े हैं। कहीं खड़े हैं क्या? एक फोटो दिखा दो, एक पिक्चर, कहीं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसके लिए एक भक्त ने एक ऐसा भजन गाया है, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नगरिया, भक्त तेरे टेढ़े भक्तनिया तेरी टेढ़ी, अरे टेढ़ी है ये तेरी उल्टी नगरिया। तो भगवान जो है ऑब्वियसली क्योंकि कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए राम ने जो किया वो अनुकरणीय है। मतलब जो रामचंद्र जी ने किया वो हम कर सकते हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो हमको नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण ने कहा वो करना चाहिए, जैसे गीता में जो भगवान कहते हैं वो करना चाहिए। कृष्ण जो किया है वो कोई करने का प्रयास करेगा तो मात खा जाएगा, क्योंकि कृष्ण को समझना आसान नहीं है, है कि नहीं। रामचंद्र जी की लीला फिर भी थोड़ी आसान है, लेकिन रामचंद्र जी की लीला में जो करुण रस है, जो इमोशंस है, जो उसमें मार्मिक प्रसंग है, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता है। रामायण इज फुल ऑफ इमोशंस, पूरा का पूरा जो है इतना, ये अथाह सागर जो वाल्मीकि ने जो लिखा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे इसको आगे बढ़ के कि थोड़ा बहुत हम समझते हैं। तो बेसिकली हमारे वेद है, पुराण है और इतिहास है। तो रामायण और महाभारत दोनों इतिहास में आता है, और इस इतिहास में क्या है, घटनाएं हैं, स्टोरी है, लीलाएं हैं, बहुत सारी लीला हुई है। तो बाहर की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी चल रही है, कुछ पारिवारिक मामला चल रहा है भगवान रामचंद्र जी के परिवार का, जो कुछ भी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर डीप रूटेड, उसके अंदर बहुत ही गहन एक संदेश है, एक मैसेज है, ठीक है। तो इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, लेकिन एक इनक्रिप्टेड मैसेज है। इनक्रिप्टेड मैसेज समझते हो, जो अंदर है, जिसको खाली कोडिंग और डिकोडिंग से समझा जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लीला पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है, उसके अंदर का जो मैसेज है वो समझना बहुत कठिन है। और वो मैसेज केवल परंपरा में और भगवान के शुद्ध भक्तों से ही समझा जा सकता है ना। जैसे जब तक प्रभुपाद जी नहीं आए थे, बहुत लोगों को भागवत के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था, और जब उसको प्रभुपाद जी ने लॉजिकली समझाया तब हजारों लाखों करोड़ों कृष्ण के भक्त बन गए, है ना। नहीं तो गीता तो बहुत टाइम से लोग पढ़ते आ ही रहे हैं। तो वो जो सरेंडर था, तो गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के आधार पर कोई भी चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो राम, भगवान रामचंद्र जी, ये जो रामायण है, तो राम का क्या अर्थ है बताइए आप लोग, राम का अर्थ क्या है? जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो खुशी देते हैं, ही इज अ रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, जो आनंद के अथाह सागर है, महासागर है, वो है भगवान रामचंद्र जी, जो आनंद देते हैं, ठीक है। उसके विपरीत रामायण में एक और पात्र है जो पूरा दुनिया को दुख देता है, कौन है वो? रावण। तो राम है जो आनंद दे रहे हैं, आनंद के दाता है, आनंद के सागर है, और इधर एक रावण है जो दुख देता है। तो हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं कि किनके साथ खड़े रहने से हमको आनंद मिलता है, और कभी कभी किनके साथ खड़े रहने से दुख भी मिलता है, या कोई लोग दुख देने के लिए पैदा होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। फिर एक और पर्सनालिटी है जिनका नाम है दशरथ, भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ। दस का मतलब होता है दस, और रथ मतलब कि जिनका रथ दसों दिशाओं में जा सकता है और दसों दिशाओं में जाके फाइट कर सकता है। दूसरा मतलब दशरथ का ये होता है कि जिसने अपने दसों इंद्रियों को अपने वश में किया है ना। हमारी दस इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां। जिस व्यक्ति ने इस दस इंद्रियों को अपने वश में किया है वह दशरथ है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी इंद्रियां अपने वश में है तो उनका मन भी अपने वश में रहेगा, और ऐसे व्यक्ति को ही भगवान रामचंद्र जी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ये बहुत जरूरी है, और ये हर जगह पे बात आती है। इंडीड भगवान कृष्ण अर्जुन को योग के द्वारा मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवस दुष्करम। तो कहते हैं कि हे भगवान, ये मन मेरा बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, है ना। इसका कठिन है। आप लोग में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपका मन आपके वश में नहीं है? ऑलमोस्ट सभी लोग। तो बहुत जरूरी है तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके विपरीत दशानन, दशानन मतलब रावण, जिसके 10 सिर है और एक सिर भी उसके कंट्रोल में नहीं है, सब अलग अलग दिशा में भागते रहते हैं। तो ये दो अलग अलग यू नो क्राइटेरिया है, और पूरी की पूरी रामायण जो हमारी है वो रामायण जो है वो तीन राज्यों में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तीन सिटी में, अयोध्या और लंका। जैसे अयोध्या वासी है, लंका वासी है, राम है, रावण है, दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है। और इन दो सिटी के बीच में एक तीसरी सिटी है, और वो कौन सी सिटी है? किष्किंधा। किष्किंधा सिटी है जहां पे सुग्रीव, हनुमान जी जैसे और वाली जैसे लोग रहते हैं। तो अयोध्या जो है उसमें सब कुछ राइट और राइट और मोर राइट होता है, जैसे कि उसके अंदर अगर समझो जो भावना है, एक्चुअली अयोध्या को बोलते हैं संस्कृति, हा? तो संस्कृति है और सारे के सारे लोग अयोध्या में सभ्य है, कैसा व्यवहार करना चाहिए अच्छी तरह से जानते हैं, यज्ञ दान तप वगैरह सब जो है वो अयोध्या में चल रहा है। भाई भाई जो है उनके बीच में झगड़ा नहीं होता, इंडीड कभी कभी उनके बीच में अगर झगड़ा भी होता है तो एक दूसरे को मान सम्मान देने के लिए झगड़ा होता है। जैसे भरत और रामचंद्र जी, वो क्या कह रहे थे, भरत कह रहे थे राम से कि राम आप वन में क्यों चले गए, आपको सिंहासन पर बैठना चाहिए क्योंकि आप ही सिंहासन पर बैठने के लायक हो। और राम क्या कहते कि नहीं भरत, मुझे पिता की आज्ञा मिली है कि मैं वन में रहूं और तुम राजा बनो, तो तुमको राजा बनना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, जबकि वहां पर भाई है लंका में भी, उनमें दोनों में क्या फाइट हो रही है, विभीषण में और रावण में लड़ाई हो रही है, कुंभकर्ण में। और इंडीड रावण तो इतना था कि यहाँ पर लोग राज्य देना चाहते हैं, और रावण तो जो कुंभकर्ण सो रहा था उसको जबरदस्ती उठाया, जबकि उसको वो एक वरदान मिला हुआ था कि 6 महीने सोएगा और फिर खाएगा और फिर सो जाएगा, तो उसको बीच में उठाया रावण ने। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी उसको, और कहा कि जाओ मेरे बिहाफ पे भगवान राम, मतलब भगवान तो नहीं बोला उसने, बोला राम से युद्ध करो। और कुंभकर्ण जानता था कि राम से युद्ध करना मतलब आत्महत्या करना, तो उन्होंने कहा कि अरे सीता को रिटर्न कर दे। तो रावण उसकी बात भी नहीं माना, लेकिन रावण ने उसको मरने के लिए भेज दिया और अपने भाई को मरवा दिया राम के हाथों से, है ना। तो ये दो है, तो एक संस्कृति है और दूसरी विकृति है ना। अयोध्या क्या है? संस्कृति। लंका क्या है? विकृति। सारा का सारा उसमें काम विकृति वाला ही होता है, है क्या नहीं? जैसे शूर्पणखा है वो भी विकृति, वो आई ऊपर से उड़ते उड़ते देखा नीचे राम और लक्ष्मण है, उनका रूप देख के मोहित हो गई और आके राम से कहने लगी कि बहुत सारे लोग देखे हैं तुमसे नहीं देखा, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो राम ने कहा कि एक वचन, एक बाण और एक पत्नी ये मैंने अपना के रखा है, तो मैं तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मण अकेला है, तुम जाके वहां ट्राई कर सकती हो। तो तुरंत क्या किया उसने, लक्ष्मण के पास चली गई निर्लज्ज के जैसे, और लक्ष्मण को जाके कहा कि बहुत सारे लोग देखे हैं तुमसे नहीं देखा, तुमसे शादी करनी है। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है शादी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं ठहरा भगवान रामचंद्र जी का दास, तो तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो क्या बनोगी? दासी। रानी बनना है कि दासी बनना है? तो विकृति थी, तो कहा नहीं रानी बनना है, तो बोला राम के पास जाओ। वापिस राम के पास गई, रिजेक्ट कर दिया था एक बार, वापिस गई और बोला आपसे शादी करनी है। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण के पास जाओ। दोनों जन फुटबॉल के जैसे खेलते रहे, और फिर उसको समझ में आया कि सीता की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सीता को मारने गई और तब लक्ष्मण ने क्या किया, उसके नाक कान काट दिए और उसको वापस भेज दिया। तो विकृति। और इन दोनों सिटी के बीच में ये एक सिटी है किष्किंधा, जिसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का क्या मतलब होता है कि कभी आप इधर भी आ सकते हो उधर भी जा सकते हो। तटस्थ मतलब आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आप पानी से दूर जा सकते हो या पानी के अंदर जा सकते हो। तो ये वो लोग हैं जो तटस्थ है, जैसे हम मार्जिनल एनर्जी है भगवान के, राइट। तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस भी हो सकते हैं और माया कॉन्शियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किष्किंधा के अंदर होते हैं जनरली, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी जैसे मैं सुबह बात कर रहा था तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, और ज़्यादातर लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ हम लोग तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल एनर्जी है। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग भी ऐसे हैं, कभी कभी हम लोग अयोध्यावासी के जैसे बिहेव करते हैं और कभी कभी हम लोग लंकावासी के जैसे बिहेव करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? हम लोग करते हैं नहीं करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग भक्त के साथ में होते हैं तो बिल्कुल अयोध्यावासी बन जाते हैं, और जब भक्तों से दूर होते हैं तो एकदम लंकावासी बन जाते हैं। है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जब किसी भक्त के सामने आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, यू नो, दासानुदास, मैं कौन हूँ, गोपी भर्तृ पद कमले और दास 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 दासानुदास। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बढ़ते जाता है तो हमको लगता है हम भी कुछ है, है ना, हमारा भी युगो थोड़ा इन्फ्लेट होते जाता है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि हम खाली दासानुदास है, फिर बोलते नहीं दास है हम, भगवान मेरे को महाराज ने दास नाम दिया है, लेकिन सब लोग मुझे प्रभु बुलाते हैं तो मैं प्रभु हूँ, और फिर प्रभु से महाप्रभु बनने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं दासानुदास बनने के लिए और बनते बॉसानुबॉस, और फिर ना, तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, ईगो हर्ट हो जाता है, तो कभी कभी हम अयोध्यावासी की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी हम लंकावासी की तरह बिहेव करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से कुछ डिवोटी लोग बात कर रहे थे, कुछ कंप्लेन कर रहे थे, तो प्रभुपाद को किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी ये डिवोटी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वो डिवोटी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। प्रभुपाद ने कहा रुको रुको रुको, हूज डिवोटी इन इज कौन? इसे आई एम द ओनली डिवोटी इन इज कौन, यू आर ओनली वेयरिंग द ड्रेस ऑफ ए डिवोटी। तुम खाली ड्रेस पहन के घूम रहे हो, डिवोटी हो नहीं। दूसरा व्यक्ति आया प्रभुपाद को, बोला प्रभुपाद जी मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मदिरा पीना छोड़ दिया, अंडा कांदा लहसुन कुछ नहीं खाता हूं मैं, अभी मैं डिवोटी बन गया। तो प्रभुपाद ने बोला रास्कल अभी तो ह्यूमन बना है, अभी मनुष्य बना है, डिवोटी बहुत दूर की बात है, तो खाली मनुष्य बना है अभी। तो हम जो लोग हैं कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, है ना? भक्तों के साथ में रहेंगे भक्त बन जाते हैं और दूसरों के साथ में रह के पूर्व ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। और ये जो किष्किंधा नगरी है इसके अंदर भी तीन प्रकार के लोग हैं। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अयोध्यावासी है किष्किंधा में, कौन है वो? हनुमान जी। हनुमान जी 100% अयोध्यावासी, हालांकि रह रहे वो किष्किंधा में, लेकिन उनका कार्य, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार जब ये पता चल गया कि सीता मिल गई तो बहुत सारे वानर लोग जाके ये न्यूज़ सुनाना चाहते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग न्यूज़ ब्रेक करना चाहते हैं ना, ऐसा, तो बहुत सारे लोग वानर लोग जाके, और ये मैंने किसी लेक्चर में सुना था, एक्चुअली शिक्षाष्टकम प्रभु इस लेक्चर में बता रहे थे कि वो वानर लोग जा जाके और राम की पीठ पे थाड़ करके ऐसा थपथपा के बोलते हैं अरे सीता मिल गई। क्योंकि क्या होता है, बंदर जो होता है ना उसकी प्रकृति ऐसी रहती है कि वो विचलित होता है, नाचता रहता है और ऐसे सब, तो सब जाके मार मार के उसको बता रहे हैं। तो लक्ष्मण सोच रहा है, बोला ये क्या हो रहा है, यू नो, ये लोग आके ऐसा पीठ थपथपा के भगवान राम की और उनको ये सुना रहे हैं न्यूज। लेकिन जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने उनके चरण स्पर्श किए भगवान राम के, ठीक है? तो हनुमान जी जो है वो परफेक्टली बिल्कुल अयोध्यावासी के जैसे हैं। और उसी किष्किंधा में एक और व्यक्ति है वाली, बाली। वो बाली कौन है? वो बिल्कुल लंकावासी जैसा है। उसने क्या किया, अपने खुद के भाई को मार के भगा दिया और उसकी पत्नी को जबरदस्ती हड़प लिया, हा? और उसको अपनी पत्नी बना के बैठा। वाली इतना यू नो इस प्रकार का व्यक्ति है। तो वाली जो है उसको कंपेयर किया गया टेम्पटेशन से। सो टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, और वाली को एक वरदान था, आप सब जानते हैं वाली को क्या वरदान था, कि आधा पावर जो है शत्रु का, सामने वाले का, वो उसमें आ जाएगा और अपने पावर से उसको खत्म कर देगा। अब इसको कैसे समझना, तो हम सुबह एक एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे समझो किसी को डायबिटीज है, हा? तो ये बात सत्य है कि जिसको डायबिटीज होता है उसको मिठाई बहुत अच्छी लगती है कि नहीं, एकदम। तो जैसे समझो डायबिटीज किसी को हुआ है और उसके सामने रसगुल्ला है, एकदम मुलायम सफेद मीठा सा रसगुल्ला है, तो जब वो रसगुल्ले के सामने आता है तो क्या होता है कि हिज एबिलिटी टू से नो बिकम्स हाफ, है ना? उसकी जो जो क्षमता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है क्योंकि रसगुल्ला खाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आधी हो जाती है और रसगुल्ला की शक्ति डबल हो जाती है ना, रसगुल्ला उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर बैठते हैं, है क्या नहीं? तो ये टेम्पटेशन है। तो वाली बिल्कुल उस तरह का था कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को भी मार के भगा दिया है ना, बोला भाग यहाँ से, मैं खाली इधर एंजॉय करूंगा, तेरे को कोई चांस नहीं है, तो वो रावण की मेंटालिटी वाला है। और रावण कैसा है कि एक बार रावण को पता चला कि वाली नाम का ये जो वानर है कि बहुत शक्तिशाली है, तो रावण उसको खत्म करना चाहता था, क्योंकि रावण कहना चाहता था कि एको अहम द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, कि मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको ये बात पता चली कि वाली के पास एक ऐसा वरदान है कि रावण की आधी शक्ति उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर रावण भी घबरा गया, बोला अभी क्या करूं मैं। तो उसने सोचा कि इसको छुप के मारूंगा मैं, कुछ तो करूंगा मैं ऐसा। तो उसने सोचा कि चलो ये तो क्या वानर है, और रावण एक ऐसा राक्षस था कि बड़े बड़े देवता भी थर्राते थे उससे, है ना, आपको पता है। अच्छा आप, मैं क्या बताऊं कि आपको पूरी दुनिया ही उससे डरती है, आपको हाथ उठाने नहीं कहूंगा, लेकिन आप हरी बोल बोल के बोल सकते हो कि अगर आपको शनि से डर लगता है क्या? तो बहुत दुनिया पूरा शनि से डरती है कि नहीं, शनि की साड़ी साथी वगैरह। एक बार एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास गया और बोला कि बहुत गड़बड़ चल रहा है मेरी लाइफ में, हाँ कुछ करो। तो उसने कुंडली देख के कहा कि आपको शनि का प्रभाव है, साढ़े साथी है आपकी, लेकिन आप चिंता मत करो, एक यज्ञ होता है, वो यज्ञ मैं करवा दूंगा, आपका शनि का साढ़े साथी खत्म हो जाएगा, 500 रुपया लगेगा। तो वो व्यक्ति जो था उसको देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो उसने बोला कि पर 500 रुपये तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक दूसरा यज्ञ भी होता है 250 रुपये का, 250 रुपये दे दो, आपका यज्ञ करवा दूंगा मैं। क्योंकि यजमान भी जो है वो खाली पैसे के लिए यज्ञ करवाते हैं, है कि नहीं, दूसरा उनका कोई उपाय नहीं है। तो वो इसे, जैसे आजकल के जो मॉडर्न डॉक्टर लोग हैं वो क्या करते हैं, जबरदस्ती का ब्लड टेस्ट करवाएंगे, किसी को खांसी आ रही है ब्लड टेस्ट करो, अरे खांसी आ रही है उसमें ब्लड टेस्ट का क्या लेना देना, या फिर एडमिट हो, MRI करो, एक्सरे निकालो, यू नो ये करो वो करो, पूरा दुनिया भर का खर्चा आपसे करवा के रख देंगे। तो बोलते हैं कि 250 रुपये, तो बोला 250 भी नहीं है मेरे पास। तो बोला एक काम करो, एक 100 रुपये का मिनी यज्ञ होता है वो करवा दूंगा मैं, 100 रुपये दे दो। तो बोला लेकिन 100 भी नहीं है। तो वो भी छोड़ने वाला नहीं था, उसने बोला शनि को एडजस्ट करना ना, मेरे को आता है, 50 रुपया दो, एडजस्ट कर दूंगा शनि को। तो बोला कि लेकिन 50 रुपये भी नहीं है मेरे पास। तो बोला कोई बात नहीं, 25 है, बोले नहीं 10 है, नहीं 5 है, अच्छा 1 रुपया दे दो कर दूंगा। तो बोला 1 रुपया भी नहीं है। तो बोला 1 रुपया भी नहीं, अच्छा एक काम करो 54 दे दो, 54 चार आना। तो बोला 54 भी नहीं है मेरे पास। तो अपना सिर ठोका उसने और उसने बोला कि यार जब तेरे पास 54 भी नहीं है तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा, देने का इच्छा ही नहीं है कुछ। लेकिन शनि से लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। और आपको मालूम है रावण ने शनि के साथ क्या किया था, किसी को पता है, हाथ उठा के बोलो मेरे को, हाँ एक हाथ उठा वहां पे, क्या किया था शनि के साथ उसने, झाड़ू लगवा रहा था और अपने पैर के नीचे फुट मैट जिसको बोलते हैं, शनि को वहां पे दबा के रखा था उसने। और सारे देवताओं को अपने, जैसे हम लोग फोटो फ्रेम लगाते हैं ना, वैसा फ्रेम लगा के रखा था उसने, देवताओं को अंदर दीवार के अंदर चुनवा दिया था, इतना ताकत था उसमें। तो उसने सोचा कि ये वाली क्या है, एक मामूली सा बंदर है, इसको तो मैं जाऊंगा, पूछ पकड़ूंगा, ऐसा घुमाऊंगा और पटक दूंगा, हरी बोल खत्म। ऐसा तो हम लोग भी बहुत सारी योजना बनाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सोचा, वाली अपना गायत्री कर रहा था, बैठा हुआ था, तो रावण पीछे से गया, सोचा इसको पकड़ता हूँ। और वाली भी एक अजीब प्राणी था, अलग चार समुंदर में जा जाके वो संध्या करता था। तो जैसे ही रावण गया, उसने वाली का पूछ तो पकड़ लिया, और पकड़ के जैसे ही उसको उठाने गया, वो क्या किया, वाली ने वो पूछ से रावण का हाथ जो है उसको जकड़ लिया, फिर उसका पूरा शरीर जकड़ के और ऐसा स्क्वीज किया, उसको ऐसा दबाया कि बेचारे की सांस अटक गई रावण की। और बंदर था वाली, जंप मारा एक समुंदर से दूसरे समुंदर के अंदर, और ये रावण जिसने शनि को और सारे देवताओं को पकड़ के रखा था, लंकाधीराज रावण, वो बंदर की पूंछ में झूल रहा है। सोचो कैसा लग रहा होगा। तो उसने बोला यार ऐसे झूला मत, मेरा बहुत इज्जत का कचरा होगा, थोड़ा पकड़ मेरे को। इधर गया, फिर दूसरी जंप मारा, फिर तीसरा, चारों डायरेक्शन में चार जंप मार गया, छट ऐसा करके नीचे फेंका रावण को, बोला बोल क्यों आया था यहाँ पे। तो रावण भी रावण है, तुरंत चेंज हो गया और वाली को बोला, अरे मैं तो तुमसे दोस्ती करने के लिए आया था। वैसे बोलते ना मियाँ जी घोड़ी पे से गिर पड़े, तो बोले मुझे तो यहीं पे उतरना था। तो जब पता चला कि भाई ये तो वाली का तो कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो इस प्रकार के मेंटालिटी के लोग होते हैं। और फिर पता है रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि उन दोनों ने अपनी दोस्ती कैसे निभाई या दोस्ती की कसम खाई। कसम खाते ना लोग ऐसा, तो कसम खाने लगे तो उन्होंने वहां पे आग जलाई, यज्ञ किया और उस यज्ञ के बीच में 7 फेरे लिए और वहां पर कहा कि आज से जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तेरा राज्य मेरा राज्य, मेरा राज्य तेरा राज्य, मेरी संपत्ति तेरी संपत्ति, तेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, तेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तेरी पत्नी, ऐसा। मतलब उस जमाने के अंदर भी इस प्रकार की मेंटालिटी, जो विकृति, लंका विकृति है, वाली जो है वो प्रकृति है लेकिन वो विकृति के साथ में वो भी विकृत हो गया। तो विकृति के अंदर, तो जैसे वो पिक्चर में मैं बता रहा था, गाना गाते ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो ये जो था वैसा एकदम उन लोगों ने अपना दोस्ती कर लिया। तो ये विकृति है प्रकृति के अंदर ही। 3 प्रकार के लोग, तो मैंने क्या बताया, पहला सिटी अयोध्या, दूसरा लंका, और अयोध्या के अंदर राम, लंका में रावण, और बीच में सुग्रीव, और वाली और हनुमान जैसे प्रकृति। इसमें भी 3 प्रकार के लोग। तो जो हनुमान जी थे वो एकदम अयोध्यावासी, और सुग्रीव वाली जो एकदम लंकावासी। सुग्रीव जो था वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आता क्या करने का। तो जब हनुमान जी के साथ रहता था तो अयोध्यावासी जैसा बिहेव करता था, जब वाली के साथ रहता था तो वैसा बिहेव करता था, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से तो हमको भी समझना चाहिए कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, है ना। और उस प्रकार से जितना ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, ABCD ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ए इज फॉर एसोसिएशन, बी इज फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट। तो प्रसाद खाएंगे, चैंटिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। ये बुक्स जो प्रभुपाद ने जो ये ग्रंथ लिखे हैं, इन्हें प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं रामायण का अनुवाद करके जाता और रामायण पे अपनी टिप्पणी देके जाता, इतना इंपॉर्टेंट ये शास्त्र है रामायण। तो एनीवे, समय की मर्यादा को देखते हुए थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूँ। और आपको देखो, एक और चीज थी कि लंका जो थी ना वो सब चुराया हुआ था माल, उसके अंदर चोरी का माल था, चोर बाजार था लंका। लंका में एक भी चीज रावण की खुद की नहीं थी। ये जो लंका नगरी थी ये रावण ने किससे चुराया था, किसी को पता है? कुबेर से चुराया था। इंडिक शंकर भगवान, अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपने शंकर जी का नाम लिया, तो शंकर भगवान का उसने रावण ने बहुत आराधना किया, पूजा किया। जब शंकर खुश हो गए, शिव जी भोलेनाथ है वो तो आशुतोष, बोला मांग, तो 2 चीज मांगी। तो जो रावण का मैं मेंटालिटी आपको बताता हूँ कि रावण मतलब कितना विकृति विकृत प्राणी है उसके बारे में। तो शिव जी को कहा कि आपका आत्मलिंग चाहिए, और दूसरा कहा कि आपकी पत्नी मेरे को दे दो। पार्वती को मांग लिया, मदर, जगदम्बा बोलते हैं पार्वती को, राइट। पार्वती तो पूरे समाज, पूरे दुनिया की माँ है, जगदम्बा उसको मांग लिया उसको एंजॉय करने के लिए। और रावण का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसने 2 माँ लोगों को टच किया, एक सीता को एक पार्वती को, और पूरा उसका एकदम हनन हो गया। तो शिव जी को बोला पार्वती चाहिए मुझे। सोचो ना, आप समझो आपके बॉस के ऑफिस में जाओ और बॉस आपको बोनस देने के लिए बुला रहे, पर आप बोला आपकी पत्नी मेरे को दे दो, या किसी राजा को जाके बोलो, मतलब कितना विकृत प्राणी था वो एक्चुअली, और सब कुछ चुराया हुआ था और बिल्कुल अनग्रेटफुल। अयोध्या में क्या होते थे कि सारे के सारे निवासी ग्रेटफुल रहते थे, कृतज्ञ रहते थे किसी भी चीज के प्रति, यहाँ पे सारे अकृतज्ञ लोग थे। और सुग्रीव के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब राम के साथ उसकी मुलाकात हुई तो उन दोनों ने क्या वादा किया कि तुम वाली को मारो, मुझे राजा बनाओ, फिर मैं आपकी सहायता करूंगा सीता को ढूंढने के लिए, राइट। ये स्टोरी आपको पता है, ये कहानी पता है आपको। तो उसके बाद चतुर्मास आया और 4 महीने तक वो लोग सीता को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो सुग्रीव राजा बन के और किष्किंधा में चला गया और वहां भोग विलास में लग गया। जब तक राम के साथ था तब तक भक्त था, लेकिन जैसे ही राम का साथ छोड़ा भोग विलास में लग गया, और इतना भोग विलास कर रहा था और नंगाड़े वंगाड़े बज के म्यूजिक व्यूजिक बैंड वैंड और ये जो तुम्हारा ड्रम्स बज रहे थे वो रामचंद्र जी की गुफा तक सुनाई दे रहे थे। और 4 महीने बीत गए फिर भी सुग्रीव का आता पता नहीं। तो रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, जाओ जरा सुग्रीव को रिमाइंड करो, ये अपना वादा भूल गया, ये जीव जो है ये भूल गया कि हमारी मदद करनी है उसको, हमने इसकी मदद की थी, तो जाके उसको रिमाइंड करो। अभी लक्ष्मण, आप सब जानते हैं लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण तो एकदम एंग्री यंग मैन। उसने बोला भैया अभी मैं इसका वध करके आता हूँ। बोला अरे वध करने के लिए नहीं बोला बाबा, उसको खाली उसको रिमाइंड कर, जाके बता, खाली बता कि भाई बस कि जिस वाण से मैंने वाली को परलोक भेजा वो वाण अभी भी मेरे तुणीर में है, इतना कहे कहना। तो ये जो भय है ये भी जरूरी है। तो भगवान राम ने उसको ऐसा कहा कि उसको उतना ही डरा कि वो भागता हुआ मेरी शरण में आ जावे। और अगर भय नहीं रहेगा तो कोई भक्ति नहीं करेगा। करेगा कोई? कोई नहीं करेगा भक्ति अगर भय नहीं है। हालांकि भक्ति हम भय से नहीं करनी चाहिए, प्रेम के वशीभूत होकर करनी चाहिए, लेकिन उतना भय नहीं रहेगा तो कोई भक्ति भी नहीं करेगा। और बहुत ज्यादा अगर भय किसी के दिमाग में डाल दिया तो भाग जाएगा, है कि नहीं, फिर आएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से तो बिल्कुल मतलब वो भूल गया था, यू नो। तो ये इस प्रकार की है। और अयोध्या में देखो कैसे, जैसे सीता माता जब राज्याभिषेक हो गया भगवान रामचंद्र जी का और बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, और उस उत्सव के अंदर बीच में देखा कि सीता माता रो रही है, आंसू धर 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 उसके आंख से छलक रहे हैं। तो भगवान राम ने बोला अरे सीते, ये तो खुशी का माहौल है, अभी अभी तो हम वापिस आ गए हैं और राजा रानी बन गए हैं, अभी तुम क्यों रो रही हो। तो सीता ने क्या कहा, तो उस समय क्या हो रहा था कि जब उत्सव मना रहे थे तो अलग अलग लोग नृत्य कर रहे थे, अलग अलग बातें हो रही थी, और उसमें कोई कलर उड़ा रहा था ना जैसे खुशी के मारे। तो जब किसी ने गुलाल उड़ाया रेड कलर का, लाल कलर का गुलाल जब उड़ा तो उसको देखकर सीता को क्या याद आया, जटायु याद आया। उसको याद आया कि किस प्रकार से जटायु ने सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और किस प्रकार से रावण ने उसके जो पंख काटे तो किस प्रकार से जो खून उड़ा था वो सीता को याद आ गया। तो सोचो जटायु मतलब कोई इतना बड़ा भी इंसान नहीं भी था, एक छोटा सा पक्षी था, मतलब वो भी वल्चर गिद्ध, लेकिन सीता माता जो कि पूरे जगत की रानी थी वो उसको याद कर रही है उस समय। तो कितना ग्रेटिट्यूड है सोचो उस अयोध्या के अंदर, है क्या नहीं। लेकिन किष्किंधा में और लंका में कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो आधे घंटा मेरे पास है समय, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा अयोध्या के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो रामायण बहुत लंबी चौड़ी और कुछ है, इतना हमारे पास ना समय है और ना ही जैसे मैंने आपको कहा क्षमता है, लेकिन जो मैंने दूसरे कुछ भक्तों के जो क्लास में सुना है आपको रिपीट करके बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसके अंदर बहुत अलग अलग, जैसे आज हमने सुबह भी डिस्कस किया था, तो अलग अलग माइंडसेट भक्तों के हैं, अलग अलग बहुत इसमें मार्मिक प्रसंग है, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास में। तो मैं सीधा सीधा उस टॉपिक पे आता हूँ। तो जबाली ऋषि ये बताते हैं कि अयोध्या जो है वो पांच तत्वों से बनी है, और आज हम ये पांच तत्वों के बारे में सुन के समझ के सीख के और फिर जाएंगे। तो ये पांच इंग्रेडिएंट्स क्या है, या फिर जो अयोध्या की बुनियाद है, बुनियाद मतलब फाउंडेशन, कि जिस पर अयोध्या खड़ी है। देखो सभी लोग राम राज्य चाहते हैं, सभी लोग अयोध्या में रहना चाहते हैं, है कि नहीं। अगर हमारे को कोई ऑप्शन देगा तो हम लोग ऑब्वियसली वृंदावन में, मायापुर में, अयोध्या में वहाँ रहना चाहेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा है वहाँ पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमारे को अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है और हमारा भाव अच्छा नहीं है तो हम लोग वहाँ पर भी अपराध करके बैठेंगे। तो जिस प्रकार से नाम अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध हैं आप लोग जानते हैं, वैसे धाम अपराध भी होते हैं। तो धाम का भी कभी अपराध नहीं करना चाहिए और धाम की वैल्यू को समझना चाहिए कि क्या है। तो न समय ज़्यादा व्यतीत करते हुए हम ये पांच जो बुनियाद है इसके ऊपर बात करेंगे। तो अयोध्या नगरी किससे बनी थी, देखो पहले तो अयोध्या का मतलब बताता हूँ। अयोध्या, अयोध्या का मतलब होता है कि वह अयोध्या जिसके अंदर कभी झगड़ा ना हो, युद्ध नहीं होता था वहां पे, झगड़ा ही नहीं होता था, एवरीवन वाज वेरी नाइस एक्चुअली। तो अयोध्या के अंदर किसी चीज का क्राइम नहीं था, आप क्राइम फ्री कंट्री उसको बोल सकते हो। तो जैसे प्रभुपाद ने भी एक बार कहा कि अयोध्या ऐसी एक नगरी थी कि जिसके ऊपर कोई बाहर से अटैक नहीं कर सकता था, एक तो है कि कोई झगड़ा नहीं होवे, और दूसरा है कि अयोध्य मतलब उसको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था, मतलब अयोध्या को कोई भी युद्ध करके जीत नहीं सकता था, अजय था वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मेरा इस्कॉन जो मैंने बनाया है ना, ये भी अयोध्या के जैसा है, बाहर से इसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन कभी हमारे इस्कॉन को अगर क्षति पहुंचेगी तो वो अंदर से पहुंचेगी। तो जब अंदर से कोई व्यक्ति या भक्त भक्त झगड़ा करने लगेंगे तब कहीं प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हमको समझना चाहिए कि कितने अच्छी तरह से हम लोग ऐसा व्यवहार करें कि इसको कोई क्षति न पहुंचे। तो अयोध्या जिसको कोई युद्ध से जीत नहीं सकता था, और पहला इंग्रेडिएंट, पहली बुनियाद अयोध्या की है यज्ञस्य। क्या होता था? यज्ञ होता था अयोध्या में, कंटिन्यूअसली यज्ञ चलता रहता था। तो जैसे हम जानते हैं हमारे चार युग है, सतयुग के अंदर क्या लोग करते थे? तपस्या। सतयुग के अंदर तपस्या होता था, और त्रेता युग के अंदर क्या करते थे? यज्ञ करते थे। त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने का जो माध्यम था वो था यज्ञ। तो तब यज्ञ, मूर्ति पूजा, और कलयुग के अंदर कली तक संकीर्तना, हरि कीर्तन, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ करते रहते थे, और यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। समर्पण मतलब यज्ञ के अंदर आहुति डालनी रहती है, कुछ समर्पण करना पड़ता है, समर्पयामी, है ना। तो नारायण इति समर्पयामी, समर्पण हम करते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो उसके अंदर जौ जो है, घी जो है, ये जो है सब यज्ञ में डालना पड़ता था, आहुति देनी पड़ती थी। तो इसके लिए अगर हमको हमारे जीवन के अंदर राम राज्य देखना है तो बहुत सारी आहुतियाँ देनी पड़ेगी, और बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ती है हमारे को। जैसे सेना में जो व्यक्ति भर्ती होता है ना, उसको एक पाठ पढ़ाया जाता है, दैट डोंट लिव फॉर योरसेल्फ, यू नो, स्टॉप लिविंग फॉर योरसेल्फ, लिव फॉर द कंट्री, यू नो। जैसे एक अमेरिका में उसने क्या कहा था प्रेसिडेंट ने, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ऐसा मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ऐसा सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, है ना। ऐसा ही हम लोग इस्कॉन में तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मत सोचो इस्कॉन हमारे लिए क्या कर रहा है, हम लोग इस्कॉन के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। ये जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है, दैट हमको आहुति देनी है, और हमको अगर राम राज्य लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को, है आहुति देनी पड़ेगी, दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि शिक्षक जो गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते थे उनको सिखाते थे और उनको विद्यार्थी बनाते थे, विद्या अर्थ जो विद्या ग्रहण करता वो। पर आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी नहीं बना रहे, शिक्षार्थी बना रहे हैं। खाली किस माध्यम से, जस्ट मैं पढ़ लिख के और जैसे भले चीटिंग करके भी आना पड़े, कैसे भी करके मैं नंबर वन आ जाऊं। तो पूरी की पूरी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो इसी प्रिंसिपल पर चलती है कि कैसे मैं नंबर वन बन जाऊं, है कि नहीं। सारे लोगों को पछाड़ कर और नंबर वन आना है, फर्स्ट रैंक। कैसे मैं आईआईटी में घुसूं, क्या करूं वो करूं, उस तरह का जो है, तो उससे काम नहीं चलता है। यज्ञ का मतलब होता है कि जिम्मेदारी का काम है ये, है ना। जैसे जो यजमान जब यज्ञ में बैठता है तो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है उसका, हा? कई बार उसको फास्टिंग करना पड़ता है, आप यू नो सुसु करने के लिए नहीं जा सकते हैं, यज्ञ का धुआं आपकी आंख में जा रहा है, उसको सहन करना पड़ता है। लेकिन यज्ञ हम क्यों करते हैं? जन कल्याण के लिए। जैसे भागवतम में आता है ये बात कि 88,000 ऋषि लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, पूरे जन कल्याण के लिए, कि सबका भला हो, है ना, जन कल्याण के लिए। तो कई बार अपनी खुशी को मारना पड़ता है और उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। जैसे कई लोगों ने, अभी जो आप देखो कि हर किसी ने, रामायण के हर पात्र ने अपनी खुशी को पीछे रखकर और दूसरों की खुशी के लिए काम किया, है ना। जैसे भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी को दशरथ महाराज ने अपने मुंह से कहा नहीं कि तुम वन में चले जाओ, कैकेयी ने कहा था। और राम कह सकते थे कि यार ये तुम्हारा आपस का मामला है, मैं क्या करूँ इसके अंदर, यू नो। राम नहीं चाहते तो नहीं भी जाते थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने पिता की इच्छा भी उन्होंने उसके पिता ने नहीं की, लेकिन क्योंकि वो वचनबद्ध थे, भगवान रामचंद्र जी ने स्वेच्छा से और जाना। और आपको पता है कि जब भगवान रामचंद्र जी को ये बात पता चली कि उनको राजा बनाया जा रहा है, जैसे सोचो, मैं जैसे बता रहा था ना कि हम लोग बहुत सोचते हैं, योजना बनाते, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आज उनको कहा गया रात को, सुबह कि तुमको राजा बनना है, तो भी भगवान रामचंद्र जी के चेहरे पे एकदम वैसे ही भाव थे। ऐसा नहीं था कि कोई राजा बन गया तो कोई पागल हो जाता है, है ना, कह रहे लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब वो कैकेयी के कक्ष में से वापस बाहर आए, जब उनको पता चला कि अभी वो राजा तो नहीं बनेंगे लेकिन वनवास जाना पड़ेगा, तो भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। शिकन मतलब कोई उनके चेहरे पे कोई दर्द नहीं था या ऐसा अरे ये क्या हो गया, उदासी नहीं थी। बिल्कुल सेम टू सेम रामायण इसका वर्णन करता है कि भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अंदर गए थे वैसे ही आए थे, एकदम धीर पुरुष थे। धीरस तत्र न मुहियति भगवान कहते हैं गीता के अंदर, तो कोई शिकन नहीं थी, उन्होंने अपने आप की आहुति दे दी दशरथ महाराज के लिए। तो ये पहला है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है दान, दानस्य मतलब चैरिटी। आप बताओ अयोध्या के इतिहास में कैसे कैसे दानी हुए हैं, थोड़ा नाम बताओ मेरे को, कोई किसी को कराता है किसी के बारे में आप पता है अयोध्या में कैसे दानी हुए हैं? हाँ देखो आप लोग तो सब उत्तर भारत से हो भाई, आपको तो पता ही होना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हुए हैं। जब दान की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊपर रहता है, कि कितना कुछ उन्होंने किया कि अपने जीवन का सर्वस्व दे दिया, उनका राज्य चला गया, उनकी पत्नी चली गई, उनका बेटा मर गया, उसके लिए भी जलाने के लिए उनके पास में लकड़ी के पैसे नहीं थे, और उसी शमशान में वो नौकरी करते थे जहां उनका बेटा जलने के लिए आया था। तो इतना कितना कठिनाई से उनका सामना करना पड़ा। और अयोध्या के अंदर किसने दान दिया जो फेमस है, शिबी महाराज का नाम सुना है आपने किसी ने? शिबी राजा थे, उनके पास क्या हुआ कि उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र और दूसरे देवता आए कि इनकी परीक्षा लेंगे, तो उन्होंने एक ने कबूतर का रूप धारण किया और दूसरे ने बाज का, चील का। तो बाज कबूतर को खाने के लिए आया और वो कबूतर आके और शिबी महाराज की शरण ली और उन्होंने कहा कि मुझे बचाओ। तो बाज ने कहा कि नहीं, इस कबूतर पर मेरा अधिकार है, मैं इसका मांस खाऊंगा। तो शिबी ने कहा कि तुमको मांस चाहिए ना, डोंट वरी, मैं अपने हाथ से काट काट के देता हूँ। तो अपने हाथ में चाकू लेके और अपने शरीर का सारा मांस काट के और एक क्या बोलते हैं उसको, तुला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं उसको क्या बोलते हैं जो तुला होती है उसको, तराजू, हाँ तराजू के अंदर एक में कबूतर था, अपना मांस रखा तो भी कबूतर का पलड़ा भारी था क्योंकि वो तो भाई देवता था, और पूरा का पूरा शरीर उन्होंने अपना रख दिया उसके ऊपर, और तब जाके फिर देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, बोला हम खाली आपकी परीक्षा ले रहे थे। ऐसे दानी हुए हैं, हाँ इतना दान भगवान रामचंद्र जी और सभी लोग जो है अयोध्या के अंदर दान देते थे। इंडीड अयोध्या की भूमि ऐसी है कि उस भूमि पर जो व्यक्ति खड़ा हो जाता था निश्चित रूप से उसके अंदर उसके दान देने की शक्ति आ जाती थी। तो जैसे कैकेयी आप जानते हो, कैकेयी की वजह से ही सारा ये लफड़ा हुआ, लेकिन वो कैकेयी भी क्योंकि अयोध्या में थी, उसका इतना इफेक्ट था उस धाम का कि उसका कनक भवन था, कनक भवन मतलब सोने का बना हुआ भवन, बहुत ही बड़ा भव्य विशाल, क्योंकि सबसे चहेती रानी थी दशरथ जी की कैकेयी, तो उसको वो कनक भवन मिला हुआ था। लेकिन जब सीता और राम विवाह करके आए तो कैकेयी ने स्वेच्छा से सीता को अपना कनक भवन दान में दे दिया, कहा तुम इसको यूज करो, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा उसका पावर था। तो अयोध्या के अंदर हर कोई दान देता था, और हम लोग जो मनुष्य है और पर्टिकुलरली जो गृहस्थ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको करना चाहिए वो है दान। दान हमेशा देना चाहिए, दान देने से ही हमारा द्रव्य जो होता है वो शुद्ध होता है। नहीं तो कई बार हमने ऐसा देखे, बड़े बड़े दानी लोग देखे हैं इस दुनिया के अंदर, कि जैसे एक बार हमारे इस्कॉन के मंदिर में जब हुंडी को खोला तब पता चला ओहो इस दुनिया में तो कैसे कैसे दानी है। फटी हुई 10 रुपए की नोट निकली उसके अंदर से, तो कोई एक औरत थी, उसने सोचा चलो मैं पहले सब्जी मंडी में चलाने की कोशिश करती हूँ, वहाँ नहीं चली, सोचा किराना की दुकान पे चल जाएगी, वहाँ नहीं चली, सोचा राशन में चल जाएगी, वहाँ नहीं चली। तो जब वो 10 का फटा हुआ नोट कहीं नहीं चला तो उसको ला के नारायणी समर्पयामी डाल दिया। तो ऐसा ऐसे दानी लोग होते हैं जो चवन्नी भगवान के सामने देते हैं तो भी ऐसा फेंक के डालते हैं, सुनो तंग उसकी आवाज आनी चाहिए भगवान के सामने, है ना। दान तो ऐसा होता है कि एक हाथ देवे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए जैसे रहीम दास जी। रहीम जब वो दान देते थे तो आंखें झुका देते थे, देखते नहीं थे किसको दान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अरे कोई क्या सोचेगा कि मैं दान दे रहा हूं। तो इतना उनकी ख्याति बढ़ गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास उनकी ख्याति पहुंची। और तुलसीदास जी तो जानते थे इट टेक्स वन टू नो वन, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो लाइन लिख के उनको भेज दी और उनको कहा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैम, जो जो कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन, जो जो कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो बोले हे संत, ये ऐसे कहां पे से ऐसा दान देना तुमने सीखा कि जितना हाथ ऊपर बढ़ाते हो दान देने के लिए उतनी नजर क्यों झुका लेते हो। तो रहीम दास जी बेचारे शर्मा गए, हम्बल थे एकदम, अपनी पूर्ण नम्रता में वो जानते थे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहलाना चाहते हैं। उन्होंने दो लाइन तुलसीदास जी को लिख के भेजी और उनको कहा कि देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोक भरम हम पर करें तासु नीचे नैन, लोग भरम हम पर करें तासु नीचे नैन। तो बोले अरे देनदार तो कोई और है, भगवान कृष्ण भगवान राम भेजने वाले हैं, वो भेज रहे हैं, लेकिन लोग कहीं गलत ना समझ बैठे कि मैं दान देने वाला हूँ, ये सोच के मेरी लज्जा के मारे मेरी आंखें झुक जाती है। तो ऐसे ऐसे दानी है इस दुनिया के अंदर जो दान देते। तो अयोध्या दान से बनी थी, तो पहला क्या था? यज्ञ। दूसरा दान। तीसरा है दीक्षस्व, मतलब दीक्षा। वहां पे सारे लोग दीक्षित रहते थे। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो प्रभु जी मेरे को बता रहे थे श्रद्धावान कृष्ण सेवक ये ना, ऐसा सब अलग अलग ग्रेडेशन बता रहे थे कि ऐसे सब डिवोटी को बनाना है हमारे को। श्रद्धावान मतलब आ रहा है प्रोग्राम के अंदर, कृष्ण सेवक मतलब चार माला कर रहा है, ऐसा। वहां पे सारे के सारे लोग दीक्षित थे, सभी की दीक्षा हुई थी और सभी लोग अपना नित्य कार्य करते थे और अलग अलग प्रकार के तप, अलग अलग प्रकार के तप व्रत और वगैरह सब किया करते थे। लेकिन वो सब करने का केवल एक उनका पर्पस था। क्या पर्पस था? वो पर्पस था कि उन सब का जो फल है वो हम भगवान रामचंद्र जी को अर्पित करते हैं। भगवान रामचंद्र जी की खुशी के लिए अयोध्या के अंदर सब कुछ चलते रहता था ना। और जब जिस दिन अयोध्या में ये बात पता चली कि भगवान रामचंद्र जी हमारे राजा नहीं होंगे और उनको जंगल में भेजा जा रहा है, पूरी की पूरी अयोध्या एकदम दुख के सागर में डूब गई। इतना कि कुछ औरतें जो गर्भवती थी और जिनके शिशु पैदा हुए उस दिन, किस दिन? जिस दिन रामचंद्र जी वन में जाने वाले थे, जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि रामचंद्र जी जाएंगे, इंडियन आपको पता है सारी की सारी अयोध्या उनके साथ चली गई थी। लेकिन जिनकी जिनके बच्चे पैदा हुए उस दिन, तो वो माँ अपने बच्चों को कोसने लगी। सोचो अपने नवजात शिशु को माँ कोस रही है। एक माँ के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ा दिन उसके जीवन का होता है जब उसके शिशु पैदा होता है, राइट? वो कोसने लगी अपने शिशु को और कहने लगा कि कौन से मनहूस दिन तू पैदा हुआ है, हा? उस दिन पैदा हुआ है जब राम को वन में जाना पड़ रहा है। अरे कल को कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे बेटे का जन्म किस दिन हुआ था, तो और मुझे कहना पड़ेगा कि उस दिन जिस दिन राम को वनवास मिला था। तो सोचो एक माँ जो उसको कलमुहा बोल रही है कि भाई तू कौन से दिन ऐसा और ऐसे दिन पैदा होकर आया कि राम को जाना पड़ रहा है। तो इतने जो थे वो सारे के सारे भगवान राम से प्रेम करते थे और पूरे भगवान राम और इस प्रकार रहते थे। जैसे बताया जाता है कि अयोध्या के अंदर कोई भी दुकान के अंदर ताला नहीं बिकता था, देयर वाज नो शॉप सेलिंग लॉक्स, या कोई वहां पे मतलब ऐसा था कि मतलब आप सोचो कि किसी के घर में ताला ही नहीं है, चोरी होती ही नहीं थी वहां पे, हाँ। सारे के सारे जो लोग थे वो सभ्य थे ना। आज हम आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के घर में ताला ना हो, आप हाथ उठाओ किसके घर में ताला कुंडी नहीं है, चलो उठाओ हाथ एक भी हाथ नहीं उठ रहा है ना। मल्टीपल लॉक लगाते हैं हम लोग, हाँ, कितने सारे लॉक लगाते हैं और कभी कभी तो इतनी सारी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और कितना मगजमारी, मतलब ऐसा है कि लोगों को लगता है कि लॉक नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। इंडीड हम जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो सूटकेस को भी हम लोग चेन लगा के ताला मारते हैं कि कोई सूटकेस भी लेके चला जाएगा ना? मतलब हर चीज की चोरी हो जाती है ना। अफ्रीका में एक जोहानसबर्ग है, वहां पर पुलिस जो है उसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन है। सोचो, मतलब क्राइम का कैपिटल है वो, कि पुलिस को सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता था, और अयोध्या के अंदर इतने अच्छी तरह से सारी चीज मैनेज होती थी कि दशरथ महाराज को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था, ऑटोमेटिकली सारा काम चलता था। जैसे समझो, अगर अच्छे सिटीजन है तो फिर जो जो राजा है या फिर जो गवर्नमेंट है उसको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक काम चलता है कि नहीं। तो अयोध्या में क्या होता था कि समझो एक किसी गांव में पुरोहित कम है और क्षत्रिय ज्यादा है, और दूसरे गांव में पुरोहित ज्यादा है क्षत्रिय कम है, तो वो आपस में स्वैप कर लेते थे, वो इधर से उधर चले जाते थे। दशरथ महाराज को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, बहुत समृद्धि थी। तो ये तीसरा कारण। तो पहला क्या था? यज्ञ, दूसरा दान, तीसरा दीक्षा, चौथा है तपस्या। जो चौथी बुनियाद है अयोध्या की, वो क्या है? तपस्या। अयोध्या जो थी वो पूरी तपस्या के ऊपर बनी हुई थी, है कि नहीं? और आप एग्जांपल दे सकते खुद ही, कितने 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 तपस्या का वर्णन है, कौन कौन तपस्या कर रहा था अयोध्या में, हर कोई। सबसे पहले विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते राम को लेने के लिए आए थे। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी जब वन में गए तो ऑब्वियसली तपस्या करने के लिए गए, सीता माता उनके पीछे पीछे गई, वो भी तपस्या कर रही थी। लक्ष्मण, सोचो लक्ष्मण कितनी बड़ी तपस्या कर रहा था वो। लक्ष्मण की तपस्या के बारे में आपको पता है? क्या पता है, हाथ उठा के बोलो मेरे को। लक्ष्मण, हाँ बोलिए। चौदह वर्ष तक, 14 वर्ष तक लक्ष्मण खाना नहीं खाया, 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोया नहीं। अभी तो मैं देख रहा हूँ शायद हमारे लेक्चर में भी कोई ना कोई सो रहा होगा। अगर नहीं सो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नींद आ जाती है हमारे को, क्या करे, है ना? हमारा शरीर ऐसा है कि झपकी लगी जाती है, और कई बार नींद ऐसी चीज है कि कभी कभी हम लोग सेवा की वजह से अगर लेट हो रहा है और लेट सोते सोते अपने शरीर को सांत्वना देते देते उसको सुलाते कि बेटा चिंता मत कर, अभी 2 घंटा लेट हुआ है, सुबह भी 2 घंटा लेट करूंगा मैं। लेकिन उस रात्रि की निद्रा को भंग करके प्रभुपाद जी ने परपट लिखे। तो लक्ष्मण का त्याग कितना महान है कि वो क्या कर रहा था कि 14 वर्ष तक वो रात को सोता नहीं था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में सोता था, दिन में भी नहीं सोता था, दिन में सेवा करता था राम और सीता की, और रात में उनकी रक्षा करता था, प्रोटेक्ट करता था, गार्ड करता था वो लक्ष्मण। हाँ, इतनी भयंकर तपस्या। और सोचो इतनी तपस्या करने के बावजूद उसके साथ कैसा हुआ कि जब वो मृग आया मारीच सोने का, अभी भगवान रामचंद्र जी क्या नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? जानते थे, लेकिन ये भगवान की एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे थे कि सीता ने जब ये इच्छा जाहिर की कि मुझे वो मृग चाहिए, तो भगवान को छोड़कर उसने किसी और चीज की अभिलाषा की, तो भगवान को उसको लेने के लिए जाना पड़ा। और जब वो मृग के पीछे पीछे गए तो उन्होंने जब मारा, वो मारिश था, जब बाण मारा तो क्या हुआ, मारिश ने राम की आवाज में चिल्लाया, सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण, रक्षा करो, ऐसा। तो सीता घबरा गई, जबकि सीता जानती थी कि राम को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पे विपत्ति आ गई, जाओ बचाओ। और लक्ष्मण क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। क्योंकि जानते थे कि उन पे तो क्या कोई आपदा आ ही नहीं सकती। तो सीता को बड़ा गुस्सा आया और सीता ने बहुत रिक्वेस्ट किया उससे कि जाओ जाओ, अपने भाई को बचाओ। और लक्ष्मण ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं हो सकता। तो सीता माता को इतना क्रोध आया कि उसने लक्ष्मण को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो मेरा भोग करना, कि जब राम नहीं रहेंगे तो तुम मेरा भोग करोगे। अब सोचो लक्ष्मण, जिसने सीता को अपनी माँ माना है और उसके पैर के ऊपर कभी देखा नहीं है, जब रामचंद्र जी सीता के जो गहने मिले थे वो गहने लक्ष्मण को दिखा रहे थे कि देखो देखो लक्ष्मण, ये कंगन देखो, ये सीता की है ना, ये बाली देखो कान की, सीता की है ना। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया मैंने तो कभी माता सीता के पैर के ऊपर में नहीं देखा, मुझे क्या पता है कंगन किसका है, बाली किसकी है। सोचो ऐसे लक्ष्मण को सीता इतना कठोर वचन सुनाई और उस कठोर वचन की वजह से लक्ष्मण को जाना पड़ा। तब लक्ष्मण ये भी कह सकता था कि अरे मेरे को क्या लेना देना, इतना इनको मैंने सेवा किया 13 साल तक, हाँ 13 साल के बाद की बात है ये, 13 साल तक और ऐसा सुनने को मिल रहा है मेरे को ना। कभी कभी होता है ना, हम लोग इतना भक्ति करते हैं और इतना भक्ति करने के बाद कोई भक्त हमारे को ऐसा कुछ बोल देता है तो हमको ऐसा लगता है अरे यही फायदा, इतना सारा भक्ति किया और यही सुनने को मिला मेरे को अल्टीमेटली। लेकिन लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा, उधर पॉज बटन दबाया, बोला अच्छा सीता कोई बात नहीं। फिर वो गए वहां पे और जैसे राम ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण जोर से राम चिल्लाने लगे कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमको तो मैंने सीता को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था। और जब वापिस आए देखा सीता गायब, रावण सीता को चुरा के लेके चला गया, धोखे से हर ली रावण ने सीता। तो राम चिल्लाने लगे लक्ष्मण पे, बोला अरे लक्ष्मण तुम कायर हो, तुमको मैंने बोला था तुम रक्षा करना सीता की, तुम वहां पे कैसे आ गए। और सोचो क्षत्रिय के लिए ये वर्ड सुनना कायर बहुत ही मतलब ये इट इज एज गुड एज डेथ कि आदमी मर गया। जैसे अर्जुन को जब युधिष्ठिर महाराज ने एक बार कायर कहा कि क्या गांडीव खाली दिखाने के लिए लेके घूम रहे हो क्या, तो इतना गुस्सा आया उन्होंने कहा कि तुम्हारा वध कर दूंगा मैं। वो गांडीव उठा के युधिष्ठिर को ही मारने वाले थे वो, क्योंकि एक क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता वो। तो इतना कुछ कहा लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण बोल सकता था कि ये क्या हो रहा है, इतना सेवा किया और यही मेवा मिल रहा है मेरे को, यही फल मिल रहा है। तो मतलब दोनों भाई और भाभी, वन इज डाउटिंग लक्ष्मण's कैरेक्टर, वो लक्ष्मण के कैरेक्टर पे उसने सवाल उठाए कि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, गलत है, तुम्हारी गलत इच्छा है। और भगवान रामचंद्र ही डाउटेड हिज कॉम्पिटेंस, कि उसका जो क्षमता है उसके ऊपर उन्होंने मतलब कैरेक्टर कॉम्पिटेंस दोनों का धज्जिया उड़ गई। लेकिन लक्ष्मण ने फिर भी रिवॉल्ट नहीं किया, उसने पॉज बटन दबाया वहां पे, सोचा कि वॉट एवर सीता इज सेइंग डज शी मीन दैट, नहीं राम जो बोल रहे हैं क्या वो सच में वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वो अपने प्रेम बस यू नो क्योंकि सीता खो गई है ऐसे उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तपस्या कर रहे थे लक्ष्मण। तो हर कोई एक व्यक्ति, फिर भरत, भरत का क्या क्या कहूं, भरत महाराज भगवान राम को लेने के लिए चित्रकूट गए और इतना उनका मतलब एक दूसरे का जो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में मैं कवर करूंगा वहां पे, लेकिन इतनी तपस्या भरत ने की कि उसने खड्डा खोद के और जमीन के नीचे वो सोने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान राम जो है वो जमीन पे सो रहे हैं, मैं उनके लेवल पे कैसे सो सकता हूँ, मैं नीचे सोता हूँ। इतनी नम्रता सोचो किसकी होगी, तो इतनी भयंकर तपस्या। फिर ऑस्टेरिटी किसकी, उर्मिला की, यू नो जैसे लक्ष्मण तो जंगल में चला गया राम और सीता के साथ, लेकिन उर्मिला को पीछे छोड़ के गया और उर्मिला को कहा कि देखो आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, यू नो। और ऐसा भी नहीं था कि लक्ष्मण जब उधर थे जंगल में तो रोज व्हाट्सअप कॉल कर रहे थे, फोन कर रहे थे, नो फेसबुक नो व्हाट्सअप नो इंस्टाग्राम नो ईमो नो बोटिम कुछ नहीं था, ऐसा अपडेट नहीं दे रहे थे, स्टेटस फेसबुक लाइव नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं चल रहा था वहां पे, कोई कनेक्शन नहीं था। फिर बाद में भरत इधर मांडवी उधर, मतलब सोचो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन फिर भी लोग तपस्या कर रहे थे और उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो ये चौथा इंग्रेडिएंट है। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बुनियाद जिसके ऊपर अयोध्या खड़ी, और इतना कह के मैं अपने यहाँ पे विराम दूंगा, वो है त्यागस्य। त्यागस्य त्याग, त्याग का क्या बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है रामायण के अंदर। जैसे आप मेरे को बताओ कि रामायण में किसका त्याग सबसे महान है, कोई कह सकता है? नहीं, एक एक लोगों का त्याग एक से एक बढ़कर है। जो त्याग जो लोगों ने किया है, जो यू नो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे शत्रुघ्न, ठीक है, हम राम लक्ष्मण भरत के बारे में बहुत सुनते हैं। शत्रुघ्न जब भगवान रामचंद्र जी वापिस आ गए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तो एक लवणासुर नाम का मधुपुरी में राक्षस था जिसको ठिकाने लगाना था। तो भगवान रामचंद्र जी किसी पे जबरदस्ती नहीं करते थे, तो भगवान रामचंद्र ने पूछा कि भाई लवणासुर को ठिकाने लगाना है, कौन जाएगा? तो तुरंत शत्रुघ्न आगे कूदे और बोले भैया मैं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं था कि शत्रुघ्न अपनी वीरता दिखाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जाके वहां पर सेटल होना था उसको मार के, और शत्रुघ्न आगे आए। पता है किसी को शत्रुघ्न आगे क्यों आए? शत्रुघ्न आगे इसलिए आए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं आगे नहीं आऊंगा तो भरत आगे आएगा, और भरत राम की कोई बात छोड़ता नहीं है, और वो जाके और उसको मारेगा और उस मधुपुरी में सेटल हो जाएगा। और अभी 14 साल के बाद भगवान रामचंद्र जी आए हैं और इतनी तपस्या इतना त्याग भरत ने किया है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बेचारे भरत को, सोचो भाई भाई के बीच में क्या मार्मिक प्रसंग हो रहा है। नहीं तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ता रहता है और प्रॉपर्टी के ऊपर केस चलता है। भारत में एक कोर्ट है, मैं सुबह बोल रहा था, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, जहाँ पे खाली फैमिली मैटर के ऊपर चर्चा होती है और झगड़ा होता है। तो वह शत्रुघ्न कितनी सूक्ष्मता है, सोचो इसके अंदर, इस व्यवहार के अंदर कितनी सूक्ष्मता है, इस पर ध्यान दीजिए कि शत्रुघ्न, क्योंकि ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी थी, तो शत्रुघ्न ने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो भरत करेगा, और मैं वापस से भरत को बिछड़ते हुए नहीं देखना चाहता भगवान राम से, उसको भगवान राम की सेवा करने दो। तो उसने त्याग कर दिया, अयोध्या का त्याग कर दिया। उर्मिला के पास तो लक्ष्मण आ गया था 14 साल के बाद, शत्रुघ्न तो चले गए। तो मतलब हर एक का त्याग जो है वो एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले त्याग किया भगवान रामचंद्र जी ने स्वेच्छा से, दशरथ ने कुछ कहा भी नहीं, कैकेयी के कहने पे रामचंद्र जी चले गए और एकदम मुनि वेश धारण करके चले गए, सैंडल भी नहीं पहना, चप्पल भी ना पहने चले गए, उनके पास कुछ था ही नहीं। और उसके पीछे पीछे बड़ा त्याग किया सीता माता ने, सीता माता चली गई, उसको जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पीछे त्याग किया लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण चला गया, फिर लक्ष्मण उर्मिला को भी नहीं लेके गया, एटलीस्ट लक्ष्मण इनके साथ में था, उर्मिला अकेली थी, पर कसम खिला के गया कि रोना मत, आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए, इतना बड़ा त्याग उर्मिला का। फिर भरत महाराज वो गए, वो नंदीग्राम के अंदर रहने लगे, और जब राम को लेने गए तो जब राम के पास गए तो इतना वो बस कहने लगे कि नहीं आप चलो वापिस से, मैं वन में रहूंगा। तो राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, पिता चाहते थे कि उनका एक पुत्र वन में रहे और एक पुत्र जो है वो गद्दी संभाले। तो उसने कहा कि मैं वन में रहूंगा, तुम गद्दी संभालो। बोला नहीं, ये बिजनेस नहीं कर सकता मैं, तुम रहो। और इतना एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम था, और वो फाइट करने लगे और वशिष्ठ को कहने लगे कि आप भैया को समझाओ, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर मर जाऊंगा। और वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे भरत, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारा त्याग देख के, और मेरे जैसा धीर पुरुष जो है वो भी एक भावनाओं में बहा जा रहा है और मैं विचलित में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जब जनक महाराज आए तो वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हो गए कि एटलीस्ट जनक को मैं बोलता हूँ फैसला करने के लिए। और जब फैसला हुआ तो जनक महाराज ने कहा कि हे भरत, तुम्हारा त्याग राम से ज्यादा है। किसी एक भक्त ने ऐसा कहा है कि जब 100 राम को मिलाओगे तो एक भरत बनता है, ये भरत का इतना है। पर भरत की ख्याति क्या थी, जब भगवान रामचंद्र जी ने वाली को मारा छुपकर, तो वाली ने भगवान राम से कहा कि अरे तुमने ऐसा घिनौना काम किया, छुप के मुझे मारा। तो भगवान ने कहा क्या करें, तुम्हारे को ऐसा वर मिला हुआ है तो तुम्हारे को मारना बहुत जरूरी था। और फिर भगवान ने बताया कि क्यों उसको मारा, तो वो सारा एक अलग स्टोरी है। लेकिन वाली भी भगवान को, राम को क्या कहने लगा, कह रहे तुमने ऐसा गलत काम किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि लोग भरत के बारे में क्या बात करेंगे, तुम भरत का भाई हो क्या ऐसा काम किया। जैसा हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं कुछ करते हैं, अरे प्रभु जी डिवोटी होकर आप ऐसा कर रहे हो, है कि नहीं, सुनने मिलता है ना कभी कभी ऐसा। तो बोला अरे भरत के भाई होके, तो भरत की इतनी ख्याति, वाली जैसा दुष्ट प्राणी भी जो था वो भी भरत की इतनी इज्जत करता था। तो भरत महाराज राम को बोले अब चलो, और फिर अगर नहीं आए तो भरत ने क्या किया, उनकी पादुका लेके और अपने भाई की पादुका को 14 बरस तक उस सिंहासन पर बिठा के उसकी पूजा किया, और खुद अयोध्या में भी नहीं रहा, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में जाके जमीन में खड्डा खोद के रहने लगा। और खाते क्या थे पता है, जब उनको पता चला कि राम खाली कंदमूल खा रहे हैं तो कंदमूल के नीचे का एक जो आइटम है वो खाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जौ लेते थे और उसको गाय के मूत्र में भिगो के और वो खाते थे। सोचो इतना बड़ा त्याग भरत का। फिर भरत तो यहाँ पे नंदीग्राम में, और उनकी पत्नी मांडवी अयोध्या के अंदर, सब एकदम मतलब एक से एक बड़ा जो समर्पण की भावना थी, जो त्याग की भावना थी, वो सब इसके अंदर हमको देखने को मिलती है कि सारा ऐशो आराम छोड़ दिया, उफ भी नहीं किया किसी ने, और सब लोग जो था वो लोग बस आपस में यही चर्चा करते थे कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें, और उसके लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने की कोशिश करनी, त्याग भी करना पड़े हमारे को तो उसके लिए हम लोग सज्ज है, हम लोग रेडी है। तो जब ऐसा होता है, जब व्यक्ति यज्ञ में लगता है, जब दान में लगता है, जब वो दीक्षित होता है, मतलब दीक्षित मतलब जो जब अपना सामर्थ्य सर्वस्व जब बस केवल भगवान के लिए सोचता है, जब तपस्या करता है और जब त्याग करता है तभी अयोध्या का निर्माण होता है, और ऐसे अयोध्या में राम राज्य होता है जहाँ पर भगवान राम आते हैं। तो हमको हमारे जीवन के अंदर ये जो हमारा हृदय है ये अयोध्या के समान बनाना है, ना कि लंका के समान, है ना। जैसे वो भक्त ने तो अपनी नम्रता में कह दिया कि मेरा हृदय तो लंका के समान ही है, लेकिन उसको अयोध्या बनाना है जहाँ पर अल्टीमेटली भगवान रामचंद्र जी आएंगे और वो वहाँ पर विराजमान होंगे। तो इस अयोध्या, हमारे हृदय को अयोध्या जैसा बनाने के लिए हमको इस बुनियाद पे चलना पड़ेगा। जब हम इस बुनियाद पे चलेंगे तब जाके कहीं हमारा हृदय अयोध्या बनेगा, उस अयोध्या के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी आके और विराजमान होंगे। जय श्री रामचंद्र भगवान की, जय श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की, जय।
हरे कृष्णा। तो बहुत ही बहुत आनंद आया। तो हमने इस तरह से भगवान राम के चरित्र के बारे में यहाँ पर सबको आनंद का डुबा दिया। तो हम चाहते हैं प्रभु जी का इसी तरह से और भी आदमी की उन्नति हो, और यहाँ पर आकर भक्त लोग भगवान करें तो हम प्रभु जी का और भी आदमी की उन्नति हम एक बार फिर से हर समारोह करें।
कृष्णा 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 हरे हरे हरे।